सो आप लोग अलग अलग स्थानों से आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। अजमेर से कोई आया है? अजमेर से कौन है? ओके, दो तीन, आप अजमेर से ओके। और उदयपुर से, ओके। भीलवाड़ा से और बहुत सारे लोग हैं। सूरत, नोएडा से, और नोएडा से कैसे? ठीक है, कोई स्थान रह गया? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से, दिल्ली, दिल्ली भी है। कौन सा? मेरठ। हाँ, मेरठ से। कौन आया मेरठ से? आप ये पीछे और एक है, चार
ओके।
रोहतक से भी
है। रोहतक, जय। और कहीं से आए हैं? नाम? हाँ, मथुरा। यस, मथुरा से आए। गाजियाबाद,
ओके। गुरुग्राम प्रभु जी,
गुरुग्राम, अच्छा, ओके। हमारे अग्रवाल जी को हम बहुत देखते रहते हैं उस पर, जूम पर। ओके, सो नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। सो हम लोग सब श्रीनाथ जी के आश्रय में हैं यहाँ पर, और सुबह में महाराज बहुत अच्छी तरह से श्रीनाथ जी का वर्णन कर रहे थे कि कैसे श्रीनाथ जी का सुंदर रूप जिसको महाराज देख रहे थे और कुछ स्मरण कर रहे थे। दरअसल ये जो श्रीनाथ जी का रूप है, बहुत सुंदर रूप है। एक ही शिला में बने हुए हैं श्रीनाथ जी, और उस शिला पे बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद दिखती नहीं है, दर्शन नहीं होता, क्योंकि शिला पर हैं वो। श्रीनाथ जी को श्रृंगार करते हैं तो दिखाई देते हैं, लेकिन शिला पर नहीं दिखते हैं। तो शिला पर एक तोता है, तोता बना हुआ है। ओके, सो आप लोग अलग अलग स्थानों से आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। अजमेर से कोई आया है? अजमेर से कौन है? ओके, दो तीन, आप अजमेर से ओके। और उदयपुर से, ओके। भीलवाड़ा से और बहुत सारे लोग हैं। सूरत, नोएडा से, और नोएडा से कैसे? ठीक है, कोई स्थान रह गया? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से, दिल्ली, दिल्ली भी है। कौन सा? मेरठ। हाँ, मेरठ से। कौन आया मेरठ से? आप ये पीछे और एक है, चार ओके।
रोहतक से भी है।
रोहतक, जय। और कहीं से आए हैं? नाम? हाँ, मथुरा। यस, मथुरा से आए। गाजियाबाद, ओके।
गुरुग्राम प्रभु जी,
गुरुग्राम, अच्छा, ओके। हमारे अग्रवाल जी को हम बहुत देखते रहते हैं उस पर, जूम पर। ओके, सो नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। सो हम लोग सब श्रीनाथ जी के आश्रय में हैं यहाँ पर, और सुबह में महाराज बहुत अच्छी तरह से श्रीनाथ जी का वर्णन कर रहे थे कि कैसे श्रीनाथ जी का सुंदर रूप जिसको महाराज देख रहे थे और कुछ स्मरण कर रहे थे। दरअसल ये जो श्रीनाथ जी का रूप है, बहुत सुंदर रूप है। एक ही शिला में बने हुए हैं श्रीनाथ जी, और उस शिला पे बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद दिखती नहीं है, दर्शन नहीं होता, क्योंकि शिला पर हैं वो। श्रीनाथ जी को श्रृंगार करते हैं तो दिखाई देते हैं, लेकिन शिला पर नहीं दिखते हैं। तो शिला पर एक तोता है, तोता बना हुआ है। इनको कोई बताइए कि लोग साइलेंट कैसे करते हैं, फोन आता नहीं आता? आप में से किसी के अगर फोन ऑन है तो कृपया अभी साइलेंट कर लीजिए, कृपया हम दो मिनट का मौन हम रख लेते हैं आपके फोन की मृत्यु पर, लेकिन साइलेंट आपके फोन ज्यादातर ब्रह्मचारियों के ही बजते हैं इसीलिए उनको पूछना पड़ता है। सो शिला पर एक तोता बना हुआ है, दो साधु भगवान की दाई बाई ओर हैं और एक दाई ओर है, मोर बने हुए हैं, दो मोर हैं और भगवान की छवि तो आपने देखी है, भगवान का एक हाथ ऊपर है और एक हाथ ऐसे कमर पर है, भगवान के ऐसे खड़े हैं, उल्टा हाथ ऊपर है और सीधा हाथ कमर पर है और सर्प बना हुआ है, ऐसे बहुत सी चीजें वहां पर हैं और ये सब भक्ति से संबंधित हैं। ये जो बने हैं ऐसे ही नहीं कि मन में आया तोता बना दिया, मन में आया शेर बना दिया। और आप जानते हैं श्रीनाथ जी देख कहाँ पर रहे हैं, आपने दर्शन किए उनकी आंखें कहाँ हैं, ऊपर हैं, सामने हैं, कहाँ हैं, नीचे देख रहे हैं। अजीब है ना, ज्यादातर भगवान सामने देखते हैं कोई भी विग्रह, जो श्रीनाथ जी ऐसे नीचे देख, तो क्या कारण है श्रीनाथ जी के इस बहुत सुंदर रूप का। तो वर्णन किया गया उनके जो दोनों हाथ हैं, जैसे भगवान एक हाथ उठाए हुए हैं और एक हाथ उन्होंने ऐसे रखा हुआ है, तो ये कहा जाता है कि एक हाथ से वो ऐसे उठाए हुए हैं तो उससे वो जो जितने भी भक्तों के जीवन में कष्ट आ रहे हैं उसको ऐसे दूर कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए अपनी तरफ बुला रहे हैं भक्तों को, और दूसरे हाथ में उन्होंने अमृत पकड़ा हुआ है। और फिर भगवान नीचे क्यों देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है यहाँ का कि श्रीनाथ जी ऐसे नीचे देख रहे हैं, क्योंकि जब हम उनके दर्शन करते हैं भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए, चरणों से फिर हम लोग उनके अंगों को देखते हुए मुख के दर्शन करते हैं, तो जब हम मुख के दर्शन करते हैं तो भगवान ऐसे नीचे देख रहे हैं, बड़ा अजीब लगेगा ना। आप अगर किसी से मिलो हेलो हाउ आर यू और वो व्यक्ति ऐसे नीचे देखे कैसा लगेगा, लेकिन भगवान इसके द्वारा हमें संदेश दे रहे हैं कि मूर्खों अगर शरण लेनी है तो मेरे चरणों की शरण लो, कहाँ ऊपर चढ़ रहे हो सर के ऊपर, तो इसलिए नीचे की ओर देख रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि शरण कहाँ लेनी है, चरणों की शरण। तो ऐसे बहुत सारे जो साधु या उनके साथ में हैं तो वो भक्तों को प्रतिनिधित्व करते हैं कि भगवान कभी अकेले नहीं रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो इसलिए वो साधु बने हुए हैं। दो मोर हैं जो ज्ञान और वैराग्य इनके सूचक हैं, शुक्र तोता शुकदेव गोस्वामी हैं, वो भगवान के सर के पास बने हुए हैं यहाँ पर, मतलब वो सतत कथा सुना रहे हैं, भगवान को भी आनंद आता है कथा सुनने में। तो ऐसे अलग अलग चिन्ह उस शिला पर हैं। और ये जो नागद्वारा मंदिर है इसका भी इतिहास बहुत, भगवान ने बहुत लीलाएं की हैं यहाँ पर। जैसे हम सुबह सुन रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु गए और महाप्रभु के लिए नीचे आए, ऐसे ही यहाँ पर जो स्थान है, हमने कृष्ण लीला में सुना है कि कृष्ण की नगरी पर आक्रमण हुआ और कृष्ण भाग गए छोड़कर, रण छोड़ रहा है। तो ऐसे ही ये जो विग्रह हैं जब नाथद्वारा में आए थे, अभी थोड़ी कथा वैसे भी करेंगे कि नाथद्वारा तक कैसे आए, जब माधवेंद्रपुरी को मिले तो फिर ये यहाँ कैसे वल्लभ संप्रदाय में कैसे पूजित हैं, लेकिन जब नाथद्वारा में थे तो नाथद्वारा में आक्रमण होता रहा था, यहाँ पर काफ़ी आक्रमण हो रहा था, तो जो पूजा कर रहे थे बड़े चिंतित थे कि कैसे इनकी रक्षा की जाए, तो आक्रमण होते रहते थे, तो फिर इसीलिए यहाँ से कुछ दूर एक स्थान है घसियार, तो वहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हुआ था, यहाँ आक्रमण बहुत बढ़ गए और अंत में ठाकुर जी को यहाँ से ले जाना हो था, तो उनको ले जाया गया यहाँ से घसीया सन 1902 ईस्वी में। सो 1902 में जनवरी के महीने में श्रीनाथ जी को यहाँ से घसीया ले गए, क्यों उस समय वो जंगल का क्षेत्र था, कोई आता नहीं था वहाँ पर, तो वहाँ उनके लिए मंदिर बनाया गया। और जब वहाँ पहुँचे तो मंदिर पूरा नहीं हुआ था, तो जो उस समय महाराणा थे उदयपुर पर जो राज्य करते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, ठाकुर जी को कैसे यहाँ बिठाएं। तो उन्होंने कहा मेरे महल में लेके चलो उदयपुर में, वहाँ रहेंगे। तो फिर ठाकुर जी वहाँ गए और वर्णन है कि जब श्रीनाथ जी ने उदयपुर में प्रवेश, आज भी बहुत सुंदर मंदिर है उदयपुर में श्रीनाथ जी का, घसियार में भी है, यहाँ भी है तीनों। तो जब उदयपुर में गए तो बहुत सुंदर वर्णन है कि कैसे स्वागत हुआ, सारे शहर को सजाया गया, सब उनको देखने के लिए आतुर थे, बस जैसे जैसे ब्रह्मांड का कोई हीरो आ गया है और सब उनको देखने के लिए आतुर हैं, सज धज के आए हैं। वर्णन है स्त्रियां सब सज धज कर आई हैं, लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आए हैं ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए। तो करीब 10 महीने तक उदयपुर में रहे और फिर अब फिर से उनको घसीयार लाना था। तो उस समय ये 1903 हो गया, 1902 में गए थे, 1903 15 लाख रुपए खर्चा करके मंदिर बना था। अभी के लिए तो बहुत हो गया, वो 1900 की बात है, कब की बात कर रहे हैं। तो 15 लाख रुपए खर्चा करके मंदिर बनाया गया घसीयार में। और फिर ठाकुर जी वहाँ आए और 4 वर्ष तक वहाँ रहे, 5 वर्ष करीब वहाँ रहे। तो वहाँ पर भगवान को सूट नहीं किया जगह कहते वहाँ पर्वत का पानी आ रहा था, वो भगवान को सूट नहीं कर रहा था। और इसीलिए जितने भी सेवा करने वाले थे उन सबको तकलीफें होनी शुरू हो गई। इनफैक्ट जो प्रमुख सेवक थे ये वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य, उनके 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई 3 साल के अंदर, 3-4 साल के अंदर। और बहुत तकलीफें होने लगी। तो फिर सबको समझ में आया कि इच्छा नहीं है ठाकुर जी की घसीयार रहने की। तो फिर 5 वर्ष वहाँ रहने के बाद 6 वर्ष टोटल, 1 वर्ष करीब 10 महीना वहाँ रहे उदयपुर, और फिर घसीयार में, और फिर उन्हें यहाँ पर लाया गया। तो फिर जो मंदिर है वहाँ उनको रखा गया। तो ऐसे वो रहे हैं यहाँ पर। और इनकी विशेषता क्या है, ये जो नाथ द्वारा है, ये जो विग्रह हैं श्रीनाथ जी, तो ये चैतन्य महाप्रभु से भी जुड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने इनके दर्शन किए। और इतना ही नहीं, श्रील प्रभुपाद का भी संबंध है इन विग्रह से। तो थोड़ा सा वर्णन उसका करेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आना चाहते थे। कृष्ण हैं चैतन्य महाप्रभु, सन्यास लिया और सन्यास लेकर करीब 3-4 महीने बाद ही दक्षिण भारत की यात्रा पर चले गए। 2 वर्ष तक दक्षिण भारत की यात्रा की उन्होंने। फिर जब वापस आए तो उनकी इच्छा थी वृंदावन आना, लेकिन जो भक्त थे वो चाहते नहीं थे, क्योंकि महाप्रभु 2 वर्ष तक भ्रमण कर रहे थे, फिर से वापस आए, फिर वृंदावन जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे धोखे दिए चैतन्य महाप्रभु को। वो कहते थे, जब चैतन्य महाप्रभु कहते मुझे जाना है, थोड़ा सा रुक जाइए, बस अभी ये महीना खत्म हो जाएगा, अभी बारिश हो रही है, अभी ये हो रहा है, और ऐसे करते करते 2 साल निकल गए, महाप्रभु को जाने ही नहीं दिया। कोई कह सकता है कि अच्छा नहीं है, भगवान को धोखा नहीं देना चाहिए ना, हम लोग भगवान को धोखा देते हैं, कैसे, अच्छी बात नहीं है। दरअसल ये धोखा नहीं है, प्रेम है। भक्तों का प्रेम इतना था चैतन्य महाप्रभु के प्रति कि वो उनसे विरह सहन ही नहीं कर सकते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने केवल घोषणा की थी कि मैं सन्यास लूंगा, तो लोगों के हृदय टूट गए थे कि कैसे हम रहेंगे बिना महाप्रभु के, कैसे हम वो जो सुंदर रूप है, घुंघराले बाल और इतने बहुत सुंदर, कैसे उस रूप को नहीं देख पाएंगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु, तो ये प्रेम, तो चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम भक्तों का है, वो नहीं चाहते कि जाए, वो तो भगवान है, स्वाभाविक है उनसे प्रेम होना। हम लोग कुछ दिन साथ में रहते, हमारी इच्छा होती है कि हम लोग नहीं जाए छोड़ के एक दूसरे को, सही है कि नहीं। अभी हम लोग यहां पर हैं, आज हैं, कल हैं, और भी परसों जाना होगा सबको, दुख होगा कि नहीं होगा, कितने लोगों को नहीं होगा दुख, दुख होगा। बड़ा अच्छा लगता, अभी कितना अच्छा लग रहा है, सुबह से हम लोग सब साथ में हैं, भक्त मिल रहे हैं एक दूसरे से, कई भक्त पहली बार मिल रहे हैं, कई भक्त मिल चुके हैं फिर मिल रहे हैं, कई भक्त नहीं मिलना चाहते थे फिर भी मिल रहे हैं, तो बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं। तो इसीलिए वो धोखा नहीं था, प्रेम था चैतन्य महाप्रभु के प्रति। और फिर भी दो साल जब बीत गए, तब महाप्रभु ने कहा बहुत धोखा दे दिया तुम लोगों ने, अब मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आपको कोई नहीं रोकेंगे, अब आप जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकलते हैं, और उससे उन्होंने कहा सबने कि अब चतुर्मास शुरू हो गया, बस चतुर्मास खत्म कीजिए और जाइए, हम नहीं रोकेंगे। महाप्रभु ने ठीक है, आखिरी धोखा भी स्वीकार करता। तो रथ यात्रा के समय बहुत से भक्त आए, कुलिन ग्राम से कुछ भक्त आते थे, और जाते समय एक प्रश्न वो करते थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। वे जा रहे हैं वापस, और महाप्रभु के सामने आए, हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा हमें बताइए हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए हमें। तो महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात उनको कही, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। उत्तर दे रहे हैं कि क्या कर्तव्य है, उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा हमारा क्या कर्तव्य है, तो महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे कृष्णेर चरण। महाप्रभु ने कहा दो चीजें करो, कृष्ण के चरण बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और क्या कर्तव्य, क्या दो चीजें हैं, वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे कृष्णेर चरण। भगवान कृष्ण के चरण अगर हमें प्राप्त करने हैं तो ये दो चीजें करनी है। और वैष्णव कौन है, जब उन्होंने पूछा कि ठीक है आप कह रहे हैं वैष्णव सेवा करनी चाहिए, तो वैष्णव कौन है, तो उन्होंने कहा कृष्ण नाम निरंतर जाहर बदने, कृष्ण नाम निरंतर जाहर बदने, जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकले, श्री वैष्णव श्रेष्ठ भजता हर चरणे, तो वही श्रेष्ठ वैष्णव है, उसके चरणों की पूजा करो। तो ये बहुत सुंदर बात महाप्रभु ने कही कि कृष्ण नाम निरंतर जाहर बदने, निरंतर, ये अंतर जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर शब्द का एक अर्थ होता है थोड़ा सा गैप, एक में दूसरे में गैप होना, अंतर। तो निरंतर मतलब हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं, कोई गैप नहीं, कोई संडे नहीं, और कोई अन्य देवी देवता नहीं, केवल कृष्ण, निरंतर। अंतर शब्द का अर्थ शरीर भी होता है, तो वहां निरंतर मतलब बिना शरीर के, दूसरे शब्दों में शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए भगवान की भक्ति करना, कृष्ण नाम लेना। निरंतर शब्द लोभ का भी सूचक है, तो इसीलिए निरंतर मतलब बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, कुछ पाने के लिए भक्ति ना करें, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। हमारी भक्ति वही है, हमारा धर्म वही है, हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा धर्म पालन कर लिया, कृष्ण के सामने गए, कोई भी भगवान के सामने गए और कहा कि बस हमारे प्रभु ये इच्छा पूरी कर दीजिए, चार नारियल चढ़ाएंगे या जो भी चढ़ाएंगे। भगवान से व्यापार मत कीजिए, प्रेम कीजिए भगवान से। तो महाप्रभु ने कहा कि ये वैष्णव हैं और इनका पूजन करना चाहिए। और फिर नित्यानंद प्रभु को एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बुलाया और कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम वापस बंगाल जाओ। और क्यों जाओ? एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, बड़े आश्चर्य में डालने वाली बात महाप्रभु कहते हैं क्योंकि तुम वो कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि महाप्रभु कहते हैं तुम वो कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता। क्या कर सकते हैं ऐसा नित्यानंद प्रभु जो महाप्रभु नहीं कर सकते? महाप्रभु ने प्रचार किया, लेकिन अधिकतर महाप्रभु का प्रचार किसको था? जो उच्च कुलीन लोग थे वे महाप्रभु के अनुयायी बने। लेकिन जगाई मदाई का उद्धार किसने किया? तो इसीलिए उन्होंने कहा तुम वो कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की कृपा से नित्यानंद प्रभु ने वैसे वो काम किए जो चैतन्य महाप्रभु नहीं कर सके। जैसे शराबियों को प्रचार करना, महाप्रभु ने कभी नहीं किया शराब खाने में जाकर शराबियों को प्रचार, वो नित्यानंद प्रभु करें। और प्रभुपाद उसके बाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गौर निताई की अच्छी तरह से सेवा करता है, उनके पूजन में लगा है, उनके सेवन में लगा है, तो वो नित्यानंद प्रभु से भी अधिक कार्य कर सकता है। और इसका उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। नित्यानंद प्रभु ने एक स्थान पर कुछ, प्रभुपाद ने सारी दुनिया में की, तो कहते कि अगर कोई करे तो उनकी कृपा से। ये नहीं कहा प्रभुपाद ने कि उसको उसका बल बढ़ जाता, उनकी कृपा से वो कर सकता है जो नित्यानंद प्रभु से भी आगे निकल सकता। तो ये अहंकार की बात हो गई ना। कैसा लगता है कहना कि हम नित्यानंद प्रभु से भी आगे निकल रहे हैं? तो अच्छा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं तुरंत उसी तात्पर्य में कि भगवान चाहते हैं अपने भक्तों को श्रेय देना। कृष्ण चाहते तो युद्ध में सबको मार सकते थे। महाभारत के युद्ध में सबको मारना कौन सी बड़ी बात थी कृष्ण के लिए? इनफैक्ट वो मार चुके थे। पहले ही अध्याय में भगवद गीता के वर्णन है कि कृष्ण आए, जब अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ लेकर चलिए, बीच में कृष्ण आए और उन्होंने सब पर दृष्टिपात किया। आचार्यगण समझाते भगवान ने वहीं उनकी आयु क्षीण कर दी, खत्म। तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात थी करोड़ों लोगों को मारना? लेकिन वो चाहते थे अर्जुन को श्रेय मिले, श्रेय अर्जुन को दिया। हनुमान जी को लंका पार करनी है तो श्री राम की कृपा से एक ही छलांग में, रा इधर बोला और मां उधर बोला, एक छलांग में पहुंच गए, समुद्र पार कर लिया। और रामचंद्र जी को आकर वो ढूंढ रहे कैसे करें क्या करें, पार कैसे जाना है, समुद्र से कह रहे थोड़ा रास्ता दो, 3 दिन तक लेटे हुए हैं, तपस्या, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, अपने हाथ को तकिया बनाकर समुद्र को जो देखते हुए लेटे हुए हैं कि रास्ता दो, बताइए। हनुमान जी कूद गए एक छलांग में, और रामचंद्र जी विचार कर रहे हैं कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि वो श्रेय देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब रामचंद्र जी की कृपा से हनुमान जी कूद सकते हैं तो रामचंद्र जी को तो कूदने की भी जरूरत नहीं है, वो तो केवल एक पैर यहां दूसरा वहां हो गया, पहुंच जाते हैं। लेकिन श्रेय देना चाहते हैं, और ये भक्ति का मार्ग है। हमें अन्यों को श्रेय देना सीखना चाहिए। भगवान खुद दे रहे हैं, वो तो उस चीज का भी श्रेय दे रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए, हम तो उस चीज का भी श्रेय लेना चाहते जो हमें नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी स्थिति है। तो भगवान दिखा रहे भक्ति ये नहीं है, ये प्रसन्नता का मार्ग नहीं है भगवान की। सो इसलिए भक्ति में जो श्रेय की भावना है इसको त्यागना, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि आप वो कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता, इसलिए जाओ। और फिर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर आए। सो वृंदावन में महाप्रभु ने जब वृंदावन में प्रवेश किया है, और उस समय वैसे तो जब महाप्रभु चले झारखंड के जंगलों से होते हुए आए, हम सब जानते हैं महाप्रभु ने वहाँ शेरों को चीतों को बहुत बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने देखा, आश्चर्य हो गए। कभी कभी महाप्रभु के पीछे पूरा शेरों का झुंड चलता था कीर्तन करते हुए। तो ये सब आश्चर्य देखे। तो कैद करते करते फिर काशी और फिर प्रयागराज, काशी में भी उद्धार किया और फिर प्रयागराज, और फिर महाप्रभु धीरे धीरे आए मथुरा। अब हम वो सब तो वर्णन नहीं कर रहे महाप्रभु की यात्रा का। मथुरा में जैसे ही महाप्रभु ने प्रवेश किया, वर्णन ऐसे है कि महाप्रभु ने दूर से देखा और एकदम भावाविभोर हो गए मथुरा को देखते ही। तो काफी समय तक रहे, भ्रमण किया उन्होंने मथुरा में, केशव जी के दर्शन किए, फिर आगे वृंदावन गए। वृंदावन के 12 वनों में घूमे महाप्रभु गोवर्धन परिक्रमा की। तो जब गोवर्धन के पास आए तो उस समय पहले महाप्रभु राधा कुंड आए, राधा कुंड को उन्होंने प्रकट कराया। फिर आगे आए सुमन सरोवर या कुसुम सरोवर, और फिर हरिदेव जी के दर्शन किए उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा की। तो जब हरिदेव जी के दर्शन किए, हरिदेव जी बहुत महत्वपूर्ण विग्रह हैं, तो हरिदेव जी के दर्शन करके उस रात्रि को महाप्रभु उनके ही मंदिर में सो गए, वहीं हरिदेव जी के मंदिर में। और फिर वहां रात्रि को सोते समय उनको स्मरण आया, महाप्रभु सोचने लगे कि मैं गोवर्धन पर पांव नहीं रखना चाहता, मैं चढ़ना नहीं चाहता गोवर्धन पर, लेकिन फिर मैं गोपाल जी के दर्शन कैसे करूंगा, श्रीनाथ जी के दर्शन कैसे करूंगा। उस समय गोपाल जी कहे जाते थे, श्रीनाथ जी नाम बाद में आया। तो गोपाल जी के दर्शन कैसे करूंगा, ये उनकी इच्छा हुई। बस उनकी इच्छा हुई और कृष्ण ने व्यवस्था की। तो ऐसी व्यवस्था हुई कि श्रीनाथ जी या गोपाल जी जो यहाँ हैं वो उस समय गोवर्धन पर थे ऊपर, और महाप्रभु ने कहा मैं चढ़ूंगा नहीं। तो उसी रात्रि को जब महाप्रभु की ऐसी इच्छा हुई तो फिर वो उस स्थान से नीचे आ गए। तो दो स्थानों में वो रहे, एक जहाँ अनियोर है या अन्नकूट ग्राम उसको कहते हैं, और फिर वहाँ से गंधौली ग्राम वो चले गए श्रीनाथ जी। और फिर वहाँ महाप्रभु ने दर्शन किए, 3 दिन तक महाप्रभु वहीं रहे, सेवा की, साथ में रहे। यही वो विग्रह हैं जिनके हम लोग दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनकी सेवा की 3 दिन तक। और फिर जो विग्रह थे फिर वापस से ऊपर चले गए नए स्थान पर। और ऐसे ही श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, 1 महीने तक मथुरा में आकर रहे थे श्रीनाथ जी, केवल इसलिए क्योंकि उस समय सनातन गोस्वामी वृद्ध हो चुके थे और जाना नहीं, वो चढ़ भी नहीं पाते, तो उनको दर्शन देने के लिए आए थे। तो जब महाप्रभु आए वृंदावन में, बहुत सारे सुंदर सुंदर वर्णन हैं महाप्रभु की लीलाओं के, कि कैसे महाप्रभु ने वृंदावन को देखा। ऐसे कहते हैं कि जब वो जगन्नाथपुरी में रहते थे तो प्रेम से भरे हुए थे, कृष्ण प्रेम से, और जब उन्होंने वृंदावन की ओर चलना शुरू किया तो वो प्रेम 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। फिर जब वो वृंदावन में आए, जब उन्होंने दर्शन किए सब स्थानों के, वृंदावन पहुंच गए तो वो 1000 गुना बढ़ गया, और जब वो 12 वनों में घूम रहे थे तो कई कई 1000 गुना बढ़ गए। ये प्रेम महाप्रभु का वृंदावन के प्रति। तो ऐसे उन्होंने दर्शन किए, तो ये विग्रह वहीं पर थे माधवेंद्रपुरी के द्वारा, ये पूजित विग्रह हैं, प्राप्त भी हुए थे उन्हें, आज सुबह हम लोग सुन रहे थे महाराज से। और फिर ऐसा हुआ कि जब श्रीपद माधवेंद्रपुरी नहीं रहे तब फिर ये जो सेवा थी ये वल्लभ संप्रदाय के लोगों को दी गई, तो ये लोग फिर तब से वहाँ करते थे पूजा। और फिर जब विशेष करके औरंगजेब का समय आया, बड़ा क्रूर शासक था, तो उसने सब मंदिरों को तोड़ना इत्यादि शुरू किया। तो वो समय था जब वहाँ से लाए गए, श्रीनाथ जी को लाया गया गोपाल जी को बचाने के लिए। वर्णन ऐसा है कि इन विग्रहों को छुपाया जाता था, कभी पेड़ों के पीछे छुपाया, कई दिनों तक रहते थे, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में। बड़ी विचित्र बात है, भगवान जिसकी सब जिनकी रक्षा, भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं, उनकी रक्षा के लिए वो छुप छुप कर भाग रहे, कितने आश्चर्य की बात है ना। भगवान को किससे डर है, मुसलमानों के सैनिकों से, राजा के सैनिकों से, अपनी मृत्यु से, किसके डर से भाग रहे थे भगवान। तो बड़ा आश्चर्य में डाल, भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, विशेष करके कृष्ण की। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत स्थानों में घूमे वृंदावन के, तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान क्यों डरते हैं, भगवान को क्यों डरना चाहिए, और अगर भगवान डरते हैं तो फिर हम लोगों का क्या कहना, हम लोगों तो फिर कुएं में कूद जाना चाहिए, इतना डरना चाहिए, तो भगवान क्यों डरते हैं। पहला कारण ये जो लीला की छुप रहे हैं इधर उधर, तो पहला कारण था कि वो भक्तों की चिंता को बढ़ाकर उनके हृदय में अपने प्रति प्रेम को तीव्र करते हैं। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के विषय में, किसी चीज के विषय में बहुत चिंता करते हैं, तो उसका स्मरण बड़ा तीव्र हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया, किसी ज्योतिषी ने बताया कि आपकी उम्र अभी 52 वर्ष है, 54 वर्ष की उम्र में आप मर जाओगे, तो आपका स्मरण तीव्र होगा कि नहीं, आपके 54 वर्ष के बर्थडे का मनाएंगे, हो जाएगा ना, आपका हमेशा चिंतन रहेगा। एक साल रह गया, 6 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, कितना तीव्र होगा वो इंटेंस होगा एकदम वो मोमेंट। इतना तो शायद कभी नहीं होता होगा, भगवान के नाम पर इतना हो जाए तो एक दिन में मुक्ति हो जाए। तो ये भगवान चाहते हैं कि भक्त चिंता में रहे, मुझे रक्षा करनी है, कहीं औरंगजेब इसको मार ना दे, कहीं तोड़ ना दे, कहीं कुछ ना कर दे, तो वो रक्षा करे। तो उस चिंता में उनकी जो तीव्रता बढ़ जाती, भगवान उसको बढ़ाना चाहते, पहला कार्य है। और सही होता है, हम लोग जब चिंता में होते हैं किसी चीज की, विशेष करके भगवान की, जैसे यशोदा मैया, उन्होंने जब देखा कि भगवान कालिया के फनों पर नाच रहे हैं, जब यशोदा मैया आई तो उन्होंने तो बस इतना देखा कि कालिया के फनों पर हैं, उस समय वो फंसे हुए थे कालिया के फनों, बस उतना देखकर वो बेहोश हो गए। हम लोगों को कोई कुछ भी कह दे, हम लोग कभी बेहोश ही नहीं होते हैं। आप लोग कभी बेहोश हुए सुनकर कि आज कृष्ण ने भोजन नहीं किया, आज पुजारी की वजह से आधा घंटा लेट भोग लगा भगवान को, वो बेहोश होते हैं आप लोग सुनकर? पुजारी भी बेहोश नहीं होते हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन यशोदा मैया ने सुना, देखा मेरा कृष्ण बेहोश हो गया। वो तीव्रता है, वो इंटेंसिटी है, वो एंग्जाइटी है। देखिए ये भक्ति है, जब हम विग्रह की सेवा करें, यहां देखिए विग्रह को बचाने के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार है और बहुत चिंता में है कहां बचाना है, कहां छुपाना है। हम लोग विग्रह की सेवा करते, कोई चिंता नहीं है हमें, लग गया भोग, थोड़ी देर हो गई, क्या फर्क पड़ता, खड़े रहेंगे। तो ये भगवान कराना चाहते कि उस चिंता को बढ़ाकर स्मरण तीव्र कराते। जितनी चिंता हम बढ़ाते हैं हृदय में भगवान के लिए, विग्रह के लिए, उतना शुद्धिकरण बढ़ता है हमारा। इसलिए भगवान नहीं बढ़ाते हैं कि मेरी चिंता करो, सब लोग मेरी चिंता करो, वो चाहते हैं आप अपना शुद्धिकरण करो, और इसीलिए उस चिंतन को बढ़ाना चाहिए। विग्रह इसीलिए हमें दिए गए, तो श्रीनाथ जी इसीलिए डर कर भाग रहे हैं। पहला कारण कि अपने भक्तों के हृदय में वो चिंता को बढ़ाना चाहते। दूसरा कारण, भगवान एक लीला करना चाहते हैं, इधर से उधर घूमना चाहते हैं, ये उनकी लीला है, तो इसीलिए भी भगवान ऐसे छुप छुप कर भाग रहे हैं। और तीसरा कारण भगवान का ऐसे ऐसे छुपने का है कि वो अपने भक्तों को एक अवसर दे रहे हैं सेवा का। भक्त हमेशा उनकी सेवा के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, तो भगवान अवसर देते हैं। और इसमें आनंद भी लेते हैं भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान आनंद नहीं देते हैं। और साथ ही साथ इस तरह से छुपकर एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य भगवान कर रहे थे उस समय पर। वो जो मुसलमान शासक थे, जो सैनिक थे, उनको भी भक्त बना रहे थे, क्योंकि उनका भी चिंतन चल रहा था कहां पर है वो, कहां पर है, हमें विग्रह को तोड़ना है, हमें विग्रह को तोड़ना है। तो भगवान उनको भी भक्त बना रहे थे। इसलिए देखिए, एक चीज से बहुत सारे कार्य भगवान कर देते हैं। और साथ ही साथ भगवान ऐसे छुप इसलिए भी रहे थे क्योंकि भगवान को अपने भक्तों पर आश्रित होने में आनंद आता है। जब वो पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं भक्तों पर, यशोदा ने बांध दिया है, अब खोल नहीं सकते हैं तो बंधे पड़े हैं, आनंद आता है भगवान को। छोटी सी मछली के रूप में हाथ में आ गए हैं, अब वो अगर फेंक देंगे, अरे मैं मर जाऊंगी, क्या कर रहे हो, भगवान को आनंद आता है। तो इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। तो श्रीनाथ जी ऐसे ही छुपते रहे और फिर काफ़ी समय बाद यहाँ आए स्थान में, और यहाँ पर रथ रुक गया था, आगे नहीं गया, फंस गया था। तो फिर पता चला कि भगवान की इच्छा है, तो यहाँ पर फिर बनाया गया मंदिर जो आज यहाँ उपस्थित है। और ये सारी नगरी केवल भगवान के लिए बसी हुई है, नाथद्वारा में और कुछ नहीं है, बस भगवान के दर्शन और उसके उससे संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इस तरह से ये नाथद्वारा से यहाँ पर आए, और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमने जैसे कहा उनके दर्शन हुए, और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भी उन्होंने दर्शन दिए। और श्रील प्रभुपाद, उनका क्या संबंध है श्रीनाथ जी से? हम सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, लेकिन अमेरिका जाने से पहले उन्हें श्रीमती सुमति मोरारजी ने एक जाने का टिकट दिया था, राइट। वो हमारे लिए, देखिए उन्होंने एक कार्य किया, पता नहीं आगे आने वाले हजारों सालों तक उनका नाम लिया जाएगा ना, कि जब भी प्रभुपाद के प्रचार प्रारंभ की बात आती है सुमति मोरारजी का नाम आता है। तो सुमति मोरारजी वो दरअसल ये नाथ द्वारा मंदिर के टेंपल की प्रमुख ट्रस्टी थी उस समय। तो वो भी यहीं इसी मंदिर से, वो वल्लभ संप्रदाय की एकदम हार्डकोर फॉलोअर के अनुयायी हैं, लेकिन उस समय इस मंदिर की वो ट्रस्टी थी। तो प्रभुपाद को उन्होंने वो भी सहायता की जिससे कि प्रभुपाद अमेरिका जा सके। तो ऐसे ही श्रीनाथ जी का मंदिर का स्थान है यहाँ, महाप्रभु के द्वारा इनका सेवा हुई है। और यहाँ आप देखते हैं कि शाम को मंदिर में बहुत जल्दी दर्शन बंद हो जाते हैं, बहुत देर तक नहीं खुले रहते हैं। कारण ये है कि वे लोग ये गोवर्धनधारी हैं, तो भगवान ने जब गोवर्धन उठाया तो 6-7 साल के थे भगवान, तो अभी भी उसी रूप में उनकी सेवा की जाती है। तो छोटे बच्चे जल्दी सो जाते हैं ना, ज़्यादा देर से नहीं, इसीलिए उनको बीच बीच में खिलौने खिलाए जाते हैं। यहाँ पर भगवान को खिलौने से सेवा की जाती है। दरअसल ये जो वल्लभ संप्रदाय है, इसमें वे लोग भगवान से जो प्रेम, इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि मार्ग मतलब पोषण, ये शब्द भागवत से आता है पुष्टि, तो पोषण मिलना। तो अधिकतर इनमें माना जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा शास्त्रों के नियमों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कृष्ण से प्रेम करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर वल्लभाचार्य जी के, क्योंकि हम लोग इस स्थान में हैं, वल्लभाचार्य जी के अगर शिक्षाओं को देखा जाए, तो उनकी शिक्षाओं का सार क्या है? उनकी शिक्षाओं का सार, पहली बात उन्होंने समझाया कि हमें हमेशा कृष्ण की पूजा और कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए कृष्ण को। तो ये अगर पूरा उनकी शिक्षा, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, लेकिन सार यही है कि कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण को पूजें, उनकी भक्ति करें, और अगर ये सब हम करते रहेंगे तो जीवन में सफलता निश्चित आएगी। और वे कहते हैं कि अगर कृष्ण आपके हृदय में विराजमान हैं, तो फिर और किसी चीज की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए स्मरण बढ़ाइए, तीव्र स्मरण कीजिए, कृष्ण का पूजन कीजिए ताकि कृष्ण का स्मरण बढ़ सके। प्रिय वल्लभाचार्य जी के शिक्षाओं का सार है। और संक्षेप में नाथ द्वारा या श्रीनाथ जी के आगमन, इनकी बहुत सी और कथाएं हैं, यहाँ उन्होंने क्या क्या लीलाएं की हैं, श्रीनाथ जी ने बहुत सारे यहाँ पर उनकी लीलाएं भी वर्णन हैं, वो भी कभी आगे है। अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, अभी और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की कथाएं चलेंगी आगे, कल भी सुबह और फिर दोपहर को। और तो आप सब से बने रहें, हमारी विनती है कि ध्यान से श्रवण करें, कथाओं को उनके मर्म को समझने का प्रयास करें। जैसे आज हमने वर्णन किया कि किस तरह श्रेय लेने की भावना हमें त्यागनी चाहिए, किस तरह अगर हम गौर निताय नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की पूजन को बहुत महत्व देते हैं, तो फिर हम जितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो हम उसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हम कर सकते हैं। लेकिन इस भाव में हमें रहना चाहिए। और भगवान क्यों भयभीत होकर भाग रहे हैं इधर से उधर, तो ये भी चर्चा हम लोगों ने की। और कैसे जो श्रीनाथ जी हैं इनका संबंध चैतन्य महाप्रभु से, शर गोस्वामियों से, एक्चुअली के न केवल रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, सारे छह गोस्वामी गए थे उस मथुरा में, उस स्थान पर जहाँ पर एक महीने तक श्रीनाथ जी थे और उन्होंने उनकी सेवा की। तो इसलिए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण स्थान में हैं। साथ ही साथ जब हम यात्रा के लिए आते हैं, साथ में आते हैं, तो इसका क्या महत्व है? इसका पहला महत्व है कि हम सब साथ में एक दूसरे को भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। केवल साथ में रहने से हम देखते हैं वो भक्त कितना अच्छा जप कर रहा है, वो भक्त कितना अच्छा कीर्तन कर रहा है, वो भक्त कितना अच्छा सेवा कर रहा है। एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है, मिलती है या नहीं मिलती है? आप में से आज कितने लोगों को प्रेरणा मिली दूसरे भक्त को देखकर? हाथ उठाइए, कितने लोगों को दूसरे भक्त को देखकर प्रेरणा मिली? ओके, देखो यात्रा सफल। तो यात्रा आने का पहला उद्देश्य ये है कि हमें मिलता, हम देखते हैं कि देखो कितने अच्छे, कितने हृदय से सेवा कर रहे हैं, कितने अच्छे जप कर रहे हैं, कितने नम्र हैं। और फिर कुछ लोगों को देखकर कुछ गलत बातें भी सीखने को मिलती हैं, वो अलग बात है। तो दोनों चीज़ें, तो पहला उद्देश्य हमें एक दूसरे से सीखने मिलता है, दूसरा पूर्ण रूप से कृष्ण में हम मन लगा सकते हैं। कोई चिंता नहीं, घर जाना है, ऑफिस जाना है, कल ये करना है, वो करना है, कुकिंग करनी है, कोई चिंता नहीं। बस केवल एक ही चिंता, लेक्चर हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहाँ जाना है, दर्शन के लिए जाना है, एंग्जाइटी चिंता। और तीसरी चीज़ थोड़ी सी तपस्या। जब हम लोग आते हैं धाम में तो स्वाभाविक है थोड़ी बहुत तपस्या हो जाती है, सोने नहीं मिलता है, सो जाए तो तुरंत उठा दिया जाता है, चलो टाइम हो गया है, जाना है, सुबह सुबह उठना पड़ता है। जैसे कल सुबह हम लोग यहाँ 5 बजे मंगल आरती करेंगे, तो आशा है कि आप सब यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे, कल देखेंगे ये हरि बोल 5 बजे। सो अभी हम लोग 1-2 दिन के लिए ही आए हैं, तो क्या सोना है रात को, आइए सुबह मंगल आरती करें, जपा करें साथ में, तो कल कुछ सुबह होगा। तो थोड़ी तपस्या करनी चाहिए और कृपा की याचना करनी चाहिए। जब हम धाम में आए तो हमें कृपा की याचना करनी चाहिए, कृतज्ञता और याचना, ये दोनों साथ में चलना चाहिए। कृतज्ञता कि आपने हमें प्रवेश दिया, और याचना कि आप हमें सेवा में लगाए रखें। तो ये दो कार्य हमें करने चाहिए। तो अब जब दर्शन करें श्रीनाथ जी के, तो इस भाव में करिएगा कि चैतन्य महाप्रभु ने इनकी सेवा की है, इनके सामने कीर्तन किया था चैतन्य महाप्रभु ने। जब चैतन्य महाप्रभु गए वृंदावन में उन्होंने बहुत कीर्तन किया, मथुरा में भी कीर्तन किया था, और विशेष करके जब श्रीनाथ जी को देखा तो बहुत ऐसा वर्णन है कि महाप्रभु ने पूरा दिन कीर्तन किया था इनके साथ। तो अब जब हम लोग दर्शन करें तो हमें वो स्मरण आना चाहिए कि ये वही विग्रह है, ये वही विग्रह है जिनकी एक महीने तक हमारे शिव गोस्वामियों ने सेवा की। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि इस भाव में हम दर्शन करें और थोड़ी बहुत तपस्या के लिए तैयार रहें, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने, प्रभुपाद खुद भक्तों को लेके जाते थे परिक्रमा पर, वृंदावन यात्रा पर। जब प्रारंभ था इस्कॉन का, पाश्चात्य जगत से आते थे उनके शिष्य, तो प्रभुपाद खुद हरेक को ले जाके दिखाते, ये जगह है, ये जगह है। क्यों ले जाते थे, क्यों धाम यात्रा कराते थे प्रभुपाद? क्योंकि वो जानते थे कि धाम की जो शक्ति है, धाम का जो प्रभाव है, वो हमारी चेतना पर बहुत अच्छा होता है। प्रभुपाद ने हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत से कार्य किए, धाम में लाना, यात्राओं में लाना, उत्सवों को दिया, बड़े बड़े उत्सव मनाना, बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया प्रभुपाद ने, जैसे कि षड गोस्वामियों ने भी करवाया था, उन्हीं की परंपरा में प्रभुपाद ने कराया, आज उनके अनुयायी भी उस परंपरा को जारी रख रहे हैं। हम लोग भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा में कि भगवान श्री गौर नटराज की प्रसन्नता के लिए एक, हमारा प्रयास छोटा है लेकिन मंदिर भव्य होगा, तो हम लोग एक भव्य मंदिर का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, जिसके लिए हम लोग सरकार को कुछ राशि भी दे चुके हैं जिससे हमें भूमि प्राप्त हो, और आशा है बहुत जल्दी वो हो जाएगा, और आप सबके आशीर्वाद से हम उस भव्य मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी कर सकेंगे। और आशा है कि जब मंदिर की ओपनिंग होगी तो आप सब लोग आएंगे, सो आप सबको अभी से आमंत्रण दे रहे हैं, तैयारी शुरू कीजिए कि मंदिर निर्माण हो, मंदिर बने तो आप लोग आइए वहाँ पर, और फिर जब मंदिर बन जाएगा तब तो हर महीने आइए, यात्रा करेंगे वहाँ पर, सारी सुविधा होगी आप सबके लिए। बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये जगह भी बहुत अच्छी है, जहाँ पर मंदिर बन रहा है वहाँ से वृंदावन केवल 1 घंटे की दूरी है, तो बस जब इच्छा हुई मंदिर से बाहर निकले, गाड़ी ली, वृंदावन पहुँच गए, तो बहुत पास में है। और भारत का जो, भारत नहीं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है वो इस मंदिर से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 8-10 किलोमीटर, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे आप, और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो वो बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है इसके पास। खैर वो तो हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम उसका क्या वर्णन करें कि फिल्म सिटी बन रही है और आप लोग वहाँ जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि जगह बहुत अच्छी है, लोकेशन अच्छा है, यमुना एक्सप्रेसवे पे जो भी जाएंगे गाड़ियाँ वो देख सकेंगे मंदिर को जब मंदिर बन जाएगा। और अभी हमने केवल लैंड के लिए अप्लाई किया है, और कल परसों रसराज गौर प्रभु ने हमें एक फ़ोटो भेजी थी कि गूगल पर अगर आप चेक करेंगे वो जो रोड है जहाँ हम मंदिर के लिए जो हमने अप्लाई किया कि हमें ये भूमि चाहिए, अभी तक हमें मिली नहीं है, लेकिन सरकार से हमने कहा है क्योंकि वहाँ सारी सरकार की भूमि है, तो वो जो रोड है वो गूगल मैप में हरे कृष्ण रोड के नाम से दिखाई दे रहा है अभी से, हरे कृष्ण रोड, और कॉर्नर में एक लॉर्ड श्री कृष्णा टेम्पल ऑलरेडी दिख रहा है, अभी बना नहीं है कुछ वहाँ, लेकिन आप गूगल में देखिए उसको, आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा तो कृष्ण ने, जैसे भगवान ने कहा ना, मैये वेते निहिता पूर्वम एव निमित्त मात्रम भव सब्य साचिन, तो भगवान उसके द्वारा दिखा रहे हैं कि मैं तो मंदिर पहले ही बना चुका हूँ, तुम लोग बस क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाओ, फोटो खिंचाओ। सो तो इसलिए वहाँ उस स्थान पर हम लोग निर्माण करेंगे इस मंदिर का, और इच्छा है कि बहुत जल्दी इसका निर्माण हो। बहुत कभी कभी हमारे इस्कॉन के प्रोजेक्ट्स को बहुत समय लग जाता है, लेकिन इच्छा है। सो आप सब आइए जब मंदिर बने, इनवाइट करेंगे आपको। अभी तो वैसे हम लोग जब भूमि पूजन करेंगे तब भी इनवाइट करेंगे, आप तब भी आ सकते हैं, और जब मंदिर होगा तब। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद ने मंदिरों का निर्माण किया, उत्सवों को दिया, यात्राओं को दिया। आज देखिए हजारों लाखों लोग यात्रा में जाते हैं, कोई गणना नहीं है कि कितने लोग यात्रा कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं तिरुपति में बहुत लोग आते हैं, लेकिन आप जाइए वृंदावन की परिक्रमा कीजिए, खास करके ऐसे दिवसों पर जब बहुत पुण्य तिथियां होती हैं, पांव रखने की जगह नहीं होती। 21 किलोमीटर के एरिया में लाखों लोग चल रहे होते हैं। सो बहुत से लोग आ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से पाश्चात्य जगत के बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने कभी वृंदावन का नाम नहीं सुना। तो हम लोगों का भाग्य है कि हम तो भारत में हैं, थोड़ी बहुत गर्मी, अब तो गर्मी भी खत्म हो गई, गर्मी लगती है ठीक है, लेकिन आना चाहिए, यात्राओं में भाग लेना चाहिए। और हमें बड़ा अच्छा लगा आप सब यहाँ आए, आप सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और आशा करते हैं कि अब आगे भी 2 दिन तक आप सबके साथ रहेंगे, कीर्तन भजन कथा चलती रहेगी। और जैसे महाप्रभु ने कहा, 2 चीज़ें कहीं कृष्ण का चरण पाने के लिए, क्या हैं 2 चीज़ें? प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। आप लोग गाइए, दुई कर शीघ्र पावे कृष्ण चरण। आप सब ने वैष्णव सेवा तो कर ली, बहुत सारे लोगों को प्रसाद खिलाया इत्यादि, और अभी हम लोग नाम संकीर्तन करेंगे।